हो। अब प्रतीक कहे कि चौखट अत्यंत स्वच्छ है, सब कुछ स्वच्छ है, कितना स्वच्छ है, अत्यंत स्वच्छ है, सब कुछ अत्यंत स्वच्छ है। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां समान अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे जो कि प्रतीकों की भूख से रक्षा करते थे। एसी की कोई जरूरत नहीं, भगवान ने ये जो पेड़ बनाए हैं अपने आप में एसी का काम करते हैं। बुद्ध जो है पूरी छाया मिलती है, अत्यंत सुंदर द्वारका नगर में भगवान श्री कृष्ण की अनेक जगत के महान राजा और राजकुमार उनकी उपासना के निमित्त इन महलों में आया करते थे। पूरे संसार भर के राजा राजकुमार द्वारका आते थे देखने के लिए। जब भगवान कृष्ण थे द्वारका में तो द्वारका की बनावट देखने के लिए, वहां के महलों की बनावट देखने के लिए दुनिया भर के राजा और राजकुमार आया करते थे। द्वारका नगरी कैसे बनी है,
उसकी शिल्प कला का दर्शन करने के लिए कितने अच्छे तरीके से सब डिजाइन हुआ है। इन महलों के शिल्प की योजना देवताओं के अभियंता स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी। सोचो, विश्वकर्मा अगर इंजीनियर हो, द्वारका की इंजीनियर कौन है, विश्वकर्मा। भगवान की आज्ञा से एक रात में ही जो है द्वारका का निर्माण कर दिया था विश्वकर्मा ने, 9 लाख महल। और सोते सोते मथुरा वासियों को भगवान ने द्वारका में स्थानांतरित कर दिया था। मथुरा में सब सो रहे थे क्योंकि काल यवन ने अपनी सेना से मथुरा को घेर लिया। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना से मथुरा नगरी घिर गई और भगवान ने विचार किया कि जरासंध भी आने वाला है, हर साल आता है, तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध भी आएगा, तो मथुरा वासियों के ऊपर तो बड़ा संकट आ गया। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि द्वारका में जो है इतना बढ़िया नगर निर्माण करो, वहाँ के महल सब ऐसे निर्माण करो कि मथुरा की पूरी प्रजा वहाँ पर बड़े सुखपूर्वक रह सके। तो मथुरा में सोए थे और जागे द्वारका में। जब द्वारका में जागे तो उन्होंने पाया अपने महलों में, तो महलों में जो है जब उठे सो करके तो दरवाजा ढूंढने लगे कि दरवाजा कहाँ है बाहर निकलने का। तो सब लोग बोलते द्वारका द्वारका, यानी द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो जब सवेरे उठे तो सब लोग बोलते हैं द्वारका द्वारका द्वारका, तो नगरी का नाम पड़ गया द्वारका कि द्वार कहाँ है। अगर आप किसी घर में आ जाए, हाँ, अनजाने में अनजान घर में आ जाएं, तो सबसे पहले आप दरवाजा ढूंढते ही दरवाजा कहाँ है भाई निकलने का, है ना। तो नए घर में आए, सोते सोते आ गए, तो जब जागे तो सबसे पहले दरवाजा ढूंढते बाहर निकलने का दरवाजा कहाँ है। तो सब लोग बोलते हैं द्वारका द्वारका द्वारका, हाँ, तो नगरी का नाम पड़ गया द्वारका। वैसे नाम है द्वारावती, इंद्र की अमरावती, इंद्र की अमरावती पूरी बड़ी प्रसिद्ध है। तो भगवान ने जो है अमरावती से भी ज़्यादा सुंदर द्वारावती नगरी बनाई। लेकिन द्वार का नाम कैसे पड़ गया, क्योंकि वहाँ के प्रजा जो है दरवाजा ढूंढ रही थी, दरवाजा कहाँ है, द्वार का, इसलिए। तो देवताओं के अभियंता विश्वकर्मा ने अपनी संपूर्ण कौशल और प्रतिभा लगाई थी इसमें बनाने में। अमरावती भी जो है, इंद्र की अमरावती भी द्वारावती के सामने फेल है, क्योंकि भगवान के लिए बनाना है तो द्वारका कैसे बनाई होगी विश्वकर्मा ने। इन निवास स्थानों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी और उनमें प्रत्येक में भगवान श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न रानियां निवास करती थी। महर्षि नारद ने इन गृहों में से एक में प्रवेश किया। बात नहीं, सबको इशारा करिए चुप रहने का, कोई बात नहीं करेगा। महर्षि नारद ने इन गृहों में से एक में प्रवेश किया और देखा कि घर के स्तंभ मूंगों के बने हैं। मूंगा बहुत महंगा होता है, स्तंभ समझते खंभे, मूंगे के बने हुए हैं और छतों पर रत्नों से सज्जा की गई है। दीवारों स्तंभों के बीच के जो मेहराब हैं विभिन्न प्रकार के नीलमों से जगमगा रहे हैं। नीलम बहुत चमकता है, नीलम से जगमगा रहे हैं। समस्त महल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अनेक चंदोबे थे जिन्हें मोतियों की लड़ियों से सजाया गया था। आसन और अन्य साज सज्जा हाथी दांत से बनी थी जिस पर सोने से अलंकरण किया गया था। महल के अंदर रत्न दीप अंधकार को दूर कर रहे थे। महल में रत्नों के दीप थे, ये लालटेन वगैरह नहीं थी और डब्बी नहीं थी, मिट्टी के तेल से जलने वाले ये सब चीजें नहीं थी, रत्नों के दीप थे। रत्नों के दीप जैसे बल्ब प्रकाश पैदा करते हैं वैसे प्रकाश पैदा करते हैं रत्नों के दीप, उसमें कोई मतलब ये लाइट का जो है चक्कर नहीं है, ये तार वगैरह कनेक्शन पावर हाउस की कोई जरूरत नहीं है, कोई बिजली का बिल भी नहीं आता रत्नों के दीप से घर का जो है अंधकार दूर हो रहा है। रत्नों के दीप हैं जैसे ट्यूबलाइट की तरह जो है प्रकाश पैदा करते हैं रत्नों के दीपक, कोई खर्चा नहीं है, बिजली का कोई खर्चा नहीं है, कहीं वो कनेक्शन लूज हो गया, कुछ हो गया, बिजली फेल हो गई,
24 घंटे
और जब नहीं चाहिए लाइट तो कपड़ा डाल दो तो ढक जाए, बस एक कपड़ा अगर उसके ऊपर डाल दो तो जो है प्रकाश बंद हो जाए, कपड़ा हटा लो प्रकाश बंद हो जाए, कोई स्विच नहीं है। तो रत्नों के दीपक महल के अंदर, रत्नों के दीपक अंधकार को दूर कर रहे थे। रत्नों के दीपक से धुआं भी पैदा नहीं होता, गर्मी भी पैदा नहीं होती। अब बल्ब जलाते हैं तो गर्मी पैदा होती है ना, ट्यूबलाइट से भी गर्मी पैदा होती है, रत्नों के दीपक से गर्मी भी पैदा नहीं होती, ना धुआं ना गर्मी है, रत्नों के दीपक से अंधकार दूर हो रहा है। इतना अधिक धूप दीप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था। अंदर धूप दीप सुगंधित धुआं खिड़की से बाहर आ रहा है। सीढ़ियों पर बैठे मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया और उन्हें मेघ समझकर वे हर्ष से नृत्य कर रहे हैं। मयूर मेघ को देख करके नृत्य करते हैं, तो भगवान के महलों से जो धुआं निकल रहा है, धूप बत्ती का धुआं निकल रहा है, उसको देखकर का मयूर नृत्य कर रहे हैं मेघ समझ करके। अनेक दास जिन्होंने उत्तम कुर्ते पगड़ियां और रत्न जटित कुंडल धारण किए, सेवक भी जो है कुंडल रत्नों के कुंडल धारण किए हैं पगड़ियां, वे समस्त दास अत्यंत सुंदर थे और सब घर के अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, दास लगे। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस विशिष्ट महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं। तो नारद जी किसी महल में गए तो वो महल किसका था, रुक्मिणी का था। तो नारद जी ने क्या देखा, रुक्मिणी के साथ भगवान बैठे हैं और रुक्मिणी जी के हाथ में चावर की मूठ है, चावर। यद्यपि उनके समान आयु वाली सुंदर हजारों दासियां थीं, फिर भी रुक्मिणी देवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पंखा झलने में लगी हैं, पंखा झल रही। भगवान श्री कृष्ण की उपासना नारद मुनि भी करते हैं, किंतु तो भी जब उन्होंने नारद जी को महल में प्रवेश करते हुए देखा तो श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से उतर गए। हाँ, जब नारद जी को देखा तो भगवान रुक्मिणी जी के पलंग से उतर गए और उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। भगवान दिखा रहे हैं कि गृहस्थ को जो है विरक्त का सम्मान करना चाहिए। भगवान गृहस्थ हैं और नारद जी विरक्त हैं, तो विरक्त अगर अपने घर में आए तो गृहस्थ को खड़ा होना चाहिए सम्मान करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के गुरु हैं और सबको उपदेश देने के लिए नारद मुनि के समान संत जनों का आदर किस प्रकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने प्रणाम किया, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, गृहस्थ की लीला कर रहे हैं, हैं? तो नारद जी को प्रणाम किया। ना केवल श्री कृष्ण ने नमन किया, अभी तो उन्होंने नारद जी का चरण स्पर्श भी किया और हाथ जोड़कर उनसे आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की कि बैठिए। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सभी भक्त उनकी उपासना करते हैं। वे प्रत्येक प्राणी के सर्वाधिक उपास्य गुरुदेव हैं। उनके चरणों से निकलने वाला गंगा जल तीनों लोगों को पवित्र करता है। समस्त योग्य ब्राह्मण उनकी उपासना करते हैं, अतः उन्हें ब्रह्मण्य देव कहा जाता है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श मानव की लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः जब श्री कृष्ण ने नारद जी के चरण धोए और जल को माथे पर चढ़ाया, नारद जी के पैर धोए और जल को अपने माथे पर चढ़ाया, तब नारद मुनि ने कोई आपत्ति नहीं की। तो ये समझ रहे हैं कि भगवान जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान सबको संत जनों का आदर करने की विधि की शिक्षा दे रहे हैं कि संतों का कैसे आदर करना चाहिए। आदि नारायण और प्राणी मात्र के सखा भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार वैदिक विधि विधानों द्वारा नारद जी की पूजा की। मधुर शब्दों में उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने नारद जी को संबोधित किया, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले, हे महर्षि, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो नारद जी ने कहा, प्रिय भगवान, आपका ऐसा व्यवहार तनिक भी चकित करने वाला नहीं है, क्योंकि आप श्री भगवान हैं, समस्त जीवों के स्वामी हैं, आप समस्त प्राणियों के परम मित्र हैं, किंतु आप विद्वेषी व्यक्तियों के परम दंड देने वाले भी हैं। मुझे ज्ञात है आप समस्त ब्रह्मांड के पोषण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। आप किसी के द्वारा प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किए गए कि जीव को जो है विवश होकर के जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान को कोई बंधन थोड़ी होता है कि भगवान को कोई विवश करेगा जन्म लेने के लिए। अपनी स्वतंत्र इच्छा से आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और तिरोहित होते हैं। ये मेरा महान सौभाग्य है कि आज मैं आपके चरण कमलों के दर्शन करने में समर्थ हुआ। कौन बोले? नारद जी बोले, आपके चरण कमलों से जिसका प्रेम हो जाता है उसकी उन्नति ही श्रेष्ठ स्थिति तक हो जाती है। प्रिय भगवान, आप असीम हैं, आपके ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्म और शिव आदि देवता भी आपको अपने हृदय में स्थापित करने में और आपका ध्यान करने में व्यस्त रहते हैं। ब्रह्मा शिव भी जो है इसी कार्य में व्यस्त हैं। किस कार्य में? आपको हृदय में स्थापित करने में व्यस्त हैं। भौतिक जगत के इस अंधकूप में पड़ी हुई आत्माएं केवल आपके चरण कमलों को स्वीकार करके मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार आप बद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। प्रिय भगवान, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझसे प्रश्न किया कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। आपने मुझसे पूछा कि आपकी क्या सेवा करूं। इसके उत्तर में मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपके चरण कमलों को कभी ना भूलूं, ये सेवा करो मेरी। भगवान ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो कहा कि ये सेवा करो मेरी कि मैं आपके चरण कमलों को कभी ना भूलूं, ये सेवा है। भगवान बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो बोले आपकी ये सेवा है कि मैं आपके चरण कमलों को कभी ना भूलूं, ये सेवा करो मेरी। किसी भी स्थान पर रहने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे मैं कहीं रहूं आपके चरण कमलों को ना भूलूं, ये किंतु मात्र मेरी यही विनती है कि मैं सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। नारद मुनि ने भगवान से जो वरदान मांगा वही समस्त शुद्ध भक्तों की आदर्श प्रार्थना है, सबकी आदर्श प्रार्थना ये है, आइडियल प्रेयर। क्या? कि आपके चरण कमलों को कभी ना भूलूं। एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से किसी प्रकार का भौतिक या आध्यात्मिक वरदान नहीं मांगता, अपितु उसकी एकमात्र प्रार्थना यही होती है कि जीवन की किसी भी स्थिति में वो भगवान के चरण कमलों को भूले नहीं। शुद्ध भक्त को चाहे नरक में स्थान मिले अथवा स्वर्ग में, उसे इसकी चिंता नहीं होती, चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में, ये चिंता नहीं है। चिंता क्या है? यदि वो सदा भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है तो वो कहीं भी संतुष्ट रहेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने शिक्षाष्टकम में स्तुति की है, इसी विधि की शिक्षा दी है। क्या? मम जन्मनि जन्मनि छोरे भवतात् भक्ते रहे तो गीत वही, जन्म जन्म में आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे, ये प्रार्थना। शुद्ध भक्त जन्म मरण के चक्र को भी रोकना नहीं चाहता, जन्म जन्म तो जन्म मरण को भी रोकने की जरूरत नहीं है। अगर जन्म चलता रहे तो हमें कोई शिकायत नहीं है, आपके चरण कमल कमलों का चिंतन होता रहे तो चाहे जितने जन्म हो, है ना। उसकी एकमात्र आकांक्षा यही होती है कि जीवन की किसी भी दशा में वो भगवान के चरण कमलों का विस्मरण ना करे। तो रुक्मिणी जी की महल से निकल गए कौन? नारद जी। तो देखो अभी एक महल का दर्शन किया, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने एक अन्य रानी के महल में प्रवेश किया, एक दूसरे महल में प्रवेश किया। अब देखें यहां पर क्या होता है। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रिय पत्नी और उद्धव जी सहित चौपड़ खेलते हुए देखा। उद्धव जी है और पत्नी है, भगवान जो है चौपड़ खेल रहे हैं। भगवान तत्काल अपने आसन से उठ खड़े हुए। अरे आपका भाई। वहां तो मिलके आए और बातचीत हुई, और यहाँ पर ओ आपका स्वागत है नारद जी, आइए आइए, जैसे पहली बार मिले हों। वहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने नारद जी को अपने व्यक्तिगत आसन पर बैठने के लिए कहा, यहाँ बैठिए, इधर बैठिए। भगवान ने पुनः सत्कार की उतनी सामग्री से उनकी पूजा की, सब पूजन किया, जितनी से रुक्मिणी के महल में पूजा की थी वो सब पूजा की सामग्री लाए, और उन्होंने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, जब आप यहाँ आते हैं तो हम गृहस्थों को जो है सदैव किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता रहती है, किंतु आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आत्मसंतुष्ट हैं। हम लोग गृहस्थ, हम गृहस्थों को जो है बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, आपकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, इस दशा में हम आपका क्या स्वागत कर सकते हैं, आप तो आत्म संतुष्ट हैं, तो हम आपको आपको हम कैसे हम सेवा करें, हम क्या सेवा करें आपकी, आप तो अपने में ही संतुष्ट हैं, किंतु फिर भी आप एक ब्राह्मण हैं, अतः हमारा कर्तव्य है कि जहां तक हो सके हम आपको कुछ दें, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप आगे दीजिए कि मैं आपके लिए क्या करूं। भगवान बोल रहे हैं, तो बड़े चकित हुए नारद जी, देखो वहां रुक्मिणी के महल में तो इतने सब बातें हुई और यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ बात ही नहीं हुई है। तो बिना किसी उत्तर दिए चुपचाप बाहर निकल गए, बिना कुछ उत्तर दिए चुपचाप बाहर निकल गए। अब उन्होंने एक अन्य महल में प्रवेश किया तो अब क्या देखा, श्री कृष्ण स्नेहमय पिता की भांति छोटे बच्चों को प्यार करते हुए देखा। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया उन्होंने, तो छोटे छोटे बच्चों से जो है स्नेह कर रहे हैं पिता की तरह। तो वहां जाकर के बिना मिले बाहर आए। अब एक अन्य महल में गए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्नान करने की तैयारी करते देखा, स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों में से प्रत्येक में प्रवेश किया। 16,108 प्रत्येक में प्रवेश किया और प्रत्येक में उन्होंने श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से व्यस्त पाया, अलग अलग कार्यों में लगे हुए। एक महल में उन्होंने श्री कृष्ण को यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हुए पाया, हवन कर रहे हैं। श्री कृष्ण वहां गृहस्थों के वैदिक संस्कारों को कर रहे हैं। अन्य महल में श्री कृष्ण गृहस्थों के लिए पंच यज्ञ, पंच महायज्ञ होता है, वो कर रहे हैं। जैसे पंचयज्ञ प्रभु बताते हैं कि 5 प्रकार के जो है पाप को दूर करने के लिए पंच यज्ञ होता है। जब घड़े से जल लेते हैं तो उसमें रहने वाले बहुत से कीटाणुओं की हत्या होती है। झाड़ू लगाते हैं या आग जलाते हैं तो बहुत से कीटाणुओं की हत्या होती है। रास्ते पर चलते हैं तो बहुत से कीड़े मकोड़ों की हत्या होती है। इन 5 प्रकार के पापों से मुक्ति पाने के लिए पंच सूना यज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। खैर कलयुग में तो हरे कृष्ण मंत्र से ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन दूसरे युगों में भगवान जो है वो कर रहे हैं। एक महल में नारद जी ने क्या देखा कि श्री कृष्ण यज्ञों को करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। एक महल में कृष्ण क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। यज्ञ पूरा हो गया है, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। और किसी अन्य महल में नारद जी ने देखा श्री कृष्ण गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, मौन होकर के गायत्री कर रहे हैं। और एक महल में देखा श्री कृष्ण घोड़ों हाथियों रथों पर सवारी कर रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं। महल में, महल के अंदर घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, तो महल के अंदर ही रथ में या हाथी में या घोड़े में बैठ करके विचरण कर रहे हैं। किसी अन्य महल में क्या देखा, पलंग पर विश्राम कर रहे हैं। फिर किसी और महल में देखा आसन पर बैठे हैं और उनकी भक्त उनकी प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में देखा कि व्यापार के मामलों में उद्धव जी जैसे मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों से परामर्श ले रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, विचार विमर्श कर रहे हैं उद्धव जी के साथ में। एक महल में किशोरी गलिकाओं से घिरे हुए एक जलाशय में विहार कर रहे हैं। स्त्रियों के साथ महल के अंदर ही जो है वो है जलाशय, विहार कर रहे हैं। एक महल में नारद जी ने देखा ब्राह्मणों को सजी हुई गऊ में दान में दे रहे हैं, गऊ को सजाया है, वस्त्र पहनाया करके और आभूषण पहना करके, सींग में जो है सोना मढ़ करके, खोरों में भी चांदी मण करके गऊओं का दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। एक अन्य महल में वे पुराण की कथा सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुराण की कथा सुन रहे हैं। और कहीं पर श्री कृष्ण विनोदपूर्ण वचनों के आदान प्रदान द्वारा अपनी पत्नी के सानिध्य का आनंद उठा रहे हैं, हंसी मजाक करते हैं, पत्नी के साथ में हंसी मजाक करते हैं, विनोदपूर्ण वचनों के द्वारा आदान प्रदान कर रहे हैं। किसी अन्य स्थान पर अपनी पत्नी सहित धार्मिक उत्सव में लगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए गृहस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है अपनी आर्थिक संपत्ति में वृद्धि करे। बहुत से खर्चे होते हैं, अतः कहीं पर श्री कृष्ण को आर्थिक विकास के मामलों में संलग्न पाया गया। भाई घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा जो है चाहिए, तो उसका जो है कार्य कर रहे हैं कि पैसा कैसे आएगा। किसी अन्य स्थान पर उन्हें शास्त्रों की विधि विधानों के अनुरूप पारिवारिक जीवन का आनंद उपभोग करते हुए देखा। किसी एक महल में देखा ध्यान अवस्थित हैं, ध्यान में ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। भगवान श्री विष्णु पर चित्त एकाग्र करने के लिए ही ध्यान होता है और श्री कृष्ण आदि विष्णु हैं, किंतु मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, अतएव अपने व्यवहार द्वारा शिक्षा देते हैं कि ध्यान का अर्थ क्या है। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण वयोवृद्ध व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देकर संतुष्ट कर रहे हैं, वृद्धों को भी जो है आवश्यकता की चीजें देकर के संतुष्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि बूढ़ों को ओल्ड एज होम में भेज दिया जाए। आजकल तो बूढ़ों को भेज देते ना ओल्ड एज होम, घर में नहीं रखते। लेकिन कहीं पर नारद जी ने उन्हें युद्ध के विषयों पर वार्तालाप करते देखा। युद्ध का भी जो है कार्य होता है, तो उसमें बातचीत कर रहे हैं, युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं पर श्री कृष्ण दो विरोधियों में समझौता करा रहे हैं, आपस में कोई झगड़ा हो रहा है उसका समझौता करा रहे हैं, निपटा रहे हैं झगड़े को, निपटा रहे हैं। कहीं पर नारद जी ने देखा अपने बड़े भाई बलदेव के साथ संपूर्ण मानव समाज के लिए परम मांगलिक कार्य पर विचार कर रहे हैं, बलदेव जी के साथ में, कि कैसे प्रजा का मंगल हो उसके लिए क्या कार्य करना चाहिए। बलदेव जी के साथ विचार कर रहे हैं। नारद जी ने श्री कृष्ण को उचित समय पर अपने पुत्रों का विवाह कराते हुए देखा। किसी महल में अपने पुत्रों का विवाह करा रहे हैं, योग्य कन्या के साथ में अपने पुत्र का विवाह करा रहे हैं और विवाह अत्यंत धूमधाम से हो रहा है। किसी महल में अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं, अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं किसी महल में, तो किसी महल में अपनी पुत्र वधू का स्वागत कर रहे हैं। समस्त नगर में लोग इतनी धूमधाम और उत्सव देखकर चकित थे। यद्यपि देवता भी जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, भगवान देवताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं। कहीं पर वे जल पूर्ति के लिए कुएं बनवा रहे हैं। भाई यहां पर कुएं की आवश्यकता है तो कुआं बनवा रहे हैं जल की पूर्ति के। अज्ञात अतिथियों के लिए विश्रामालय उसको क्या बोलते हैं, धर्मशाला या विश्रामालय, वो बनवा रहे हैं। कहीं पर उद्यान बनवा रहे हैं और संत जनों के लिए विशाल आश्रम बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के हेतु वेदों ने जिन कर्तव्यों का गृहस्थों को आदेश दिया है उनमें से कुछ कर्तव्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्षत्रिय राजा के रूप में वन में पशुओं का आखेट करते हुए सिंधी घोड़े पर सवारी करते हुए जा रहे हैं, जंगली पशुओं का शिकार करने के लिए। वैदिक नियमों के अनुसार क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने के लिए अथवा यज्ञ में भेंट देने के लिए निश्चित अवसरों पर निश्चित पशुओं का शिकार करने की अनुमति है। क्षत्रियों को वध करने की इस कला का अभ्यास करने की अनुमति है, क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने पशुओं का निर्दयता से वध करना होता है। एक महल में नारद जी ने देखा श्री कृष्ण को नगर और महलों में विभिन्न नागरिकों के मंतव्य को समझने के लिए अपनी नित्य वेशभूषा को परिवर्तित करके एक गुप्तचर की भांति टहल रहे हैं। अपने नगर की गतिविधि को देखने के लिए गुप्तचर भगवान स्वयं बन गए जासूस देखने के लिए। किसी गुप्तचर को भेजते हैं तो वो हो सकता पूरी सूचना ना दे, तो स्वयं भगवान गुप्तचर बन करके नगर की गतिविधि देख रहे हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। नारद मुनि ने जीवों की परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के इन सारे कार्यकलापों को देखा। अपनी अंतरंग शक्ति के कार्यों को प्रकट करने के लिए उन्होंने मनुष्य का अभिनय किया। नारद जी मनी मन मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने भगवान को संबोधित किया। समस्त सिद्धियों के स्वामी, हे महान योगियों के ध्यान के केंद्र, ब्रह्मा शिव आदि योगियों के लिए भी आपकी सीमा अचिंत्य है, किंतु अपनी दया से अपने चरण कमलों की दिव्य प्रेम सेवा में सदैव लगे रहने वाले मुझको आपने कृपा करके अपनी अंतरंग शक्ति के कार्यों के दर्शन कराए। नारद जी कहते सभी महलों में देख लिया भगवान को। प्रिय भगवान, आप सबके आराध्य हैं। 14 लोगों के देवताओं और प्रमुख देवों को आपके दिव्य यश का पूर्ण रूप से ज्ञान है। कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं समस्त ब्रह्मांड में आपके दिव्य कार्यकलापों का यशोगान करते हुए यात्रा करने में समर्थ हों। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को उत्तर दिया, प्रिय नारद, हे देवर्षि, तुमको ज्ञात है कि मैं समस्त धर्मों का परम शिक्षक हूँ, उनका आदर्श पालन करने वाला हूँ और मैं स्वयं करता हूँ। मैं धर्म का स्वयं पालन करता हूँ और शिक्षा देता हूँ, स्थापना करता हूँ। अतएव मैं स्वयं इन धर्मों का पालन करता हूँ, जिससे समस्त जगत को शिक्षा मिल सके कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए। हे पुत्र, भगवान नारद जी को क्या बोलते हैं, हे पुत्र, मेरी इच्छा है कि तुम अंतरंग शक्ति के ऐसे प्रदर्शनों से भ्रमित नहीं होना। लोगों को शिक्षा देने के लिए किस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों में बंधकर भी मानव अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र कर सकता है। श्री भगवान गृहस्थ के मामलों में लगे। वास्तव में गृहस्थ जीवन के कारण मनुष्य बंधा होता है, किंतु गृहस्थों पर अत्यंत कृपालु होने के कारण भगवान ने साधारण गृहस्थ जीवन को पवित्र करने का मार्ग दिखलाया। श्री कृष्ण समस्त गतिविधियों के केंद्र हैं, अतएव कृष्ण भावना भावित गृहस्थ का जीवन वैदिक आदेशों से ऊपर होता है, वो स्वयं ही पवित्र हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण को नारद जी ने 16,000 महलों में निवास करते हुए देखा। अपने अचिंत शक्ति के कारण प्रत्येक रानी के महल में भगवान निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति असीम है और भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के प्रदर्शन का बारंबार दर्शन करके नारद मुनि के आश्चर्य की सीमा ना रही। कितना आश्चर्य! भगवान श्री कृष्ण ने अपने उदाहरण के द्वारा ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें चारों सिद्धांतों से अत्यधिक लगाव है। सभ्य जीवन के चारों सिद्धांतों से अधिक, चार सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन कार्यों में भगवान लगे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के कार्यों में भगवान लगे हैं। मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति के लिए भौतिक जीवन के ये चारों सिद्धांत आवश्यक हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करने की कोई आवश्यकता ना थी, तथापि उन्होंने अपने गृहस्थ कार्यों का प्रदर्शन किया, जिससे लोग अपने हित के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया, हर प्रकार से संतुष्ट किया। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों का दर्शन करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। द्वारका में 16,108 महलों में भगवान के दर्शन किए। केवल दर्शन नहीं, अलग अलग कार्यों के दर्शन किए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के सामने स्पष्ट किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से इस ब्रह्मांड में अवतीर्ण होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार वे स्वयं उन सिद्धांतों का प्रदर्शन करते हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। द्वारका में 16,000 से भी ज्यादा रानियां मुस्कान और सेवा द्वारा अपने आकर्षक स्त्रियोचित लक्षणों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए करती थी। भगवान भी प्रसन्न होकर उनके साथ गृहस्थ जीवन का आनंद उठाने वाले एक आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। सबको निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। इसे नकल नहीं करना है। कोई कहे भगवान ने 16,108 विवाह किए, चलो तो मैं 16 विवाह कर लूं। दो विवाह करने में ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप तो दो नहीं बन सकते ना, आप एक से दो भी नहीं बन सकते, तो फिर एक से ज्यादा विवाह नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि की रचना पालन और प्रलय के कारण है। जो कोई द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा का श्रवण करता है, सुन लो कथा का फल, सुन रहे सब लोग? जो कोई द्वारका में भगवान की लीलाओं की कथा का श्रवण करता है अथवा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के किसी उपदेशक का अनुसरण करता है, उसके लिए मुक्ति के मार्ग पर चलना और श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत का रसास्वादन करना अत्यंत सरल हो जाएगा। हरि बोल। इस प्रकार वो उनकी भक्ति में संलग्न हो जाएगा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न गृहों में भेंट करने जाना शीर्षक 68वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो मैंने एक अध्याय पूरा पढ़ के सुनाया, अभी 2 मिनट कम है, 2-3 मिनट में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी,
माता
अच्छा प्रश्न है कि कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति के द्वारा एक इतना बड़ा यान तैयार किया था, वायुयान तैयार किया था, जो कि इच्छा के अनुसार अलग अलग लोगों में जाता था। तो वो एक विमान था, उस विमान के अंदर भी जो है बहुत से महल थे और वन थे, बगीचे थे और जलाशय थे, बहुत कुछ था। माता देवहूति को जो है उन्होंने उस विमान में बैठा करके अलग अलग लोगों की यात्रा की, अलग अलग देवताओं के लोक में गए, वहाँ मिलने गए, सबसे मिलाया, तो एक अलग बात है। और यहाँ पर भगवान जो है द्वारका में स्वयं प्रत्येक रानी के साथ में हैं, तो एक अलग ही बात है। ये महल हैं, द्वारका में महल हैं, जबकि उन्होंने बनाया था विमान, एक नगर के आकार का विमान था, पूरा नगर मतलब आकाश में चलता था इच्छा के अनुसार, ठीक है ना? लेकिन ये विमान तो नहीं है, महल है, लेकिन भगवान स्वयं विराजमान है। क्योंकि प्रत्येक महल में भगवान स्वयं विराजमान है, इसलिए ये जो है सबसे बड़ा आश्चर्य। कर्दम मुनि ने उस विमान के द्वारा देवभूति को सब स्थान दिखला दिए, इस ब्रह्मांड के सब स्थान दिखा दिए, लेकिन जहाँ भगवान है वो तो आध्यात्मिक जगत हो गया, तो वैकुंठ हो गया। तो जितने महल थे वो सब वैकुंठ हो गए। हरि बोल, हरि बोल, बंद कर दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, उधर से बंद किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मंदिर बंद हुआ, ही बंद हुआ। हरि बोल, हरि बोल। श्री कृष्ण कथा अमृत महामहोत्सव के जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, तो जो